संबंध। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई, अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशौ। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। व्याख्या। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है, और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शूद्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। ऐसे योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरे प्रकार का जो साधक है, जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो गया, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अथवा तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी, वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। योगिनामेव कुले भवति धीमता। जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। नास्या ब्रह्मवित कुले भवति, मंडूक उपनिषद। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर है, बहुत ही दुर्लभ है। कारण कि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहां सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहां के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया है। विशेष बात, यहां एतत और ईदृशम ये दो पद आए हैं। एतत पद से तो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट समझना चाहिए, जिसका इस श्लोक में वर्णन हुआ है, और ईदृशम पद से उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक समझना चाहिए। संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है, बिंदुज और नादज। जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होती है वो बिंदुज प्रजा कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाते हैं वो नादज प्रजा कहलाती है। यहां योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग और भी दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन, और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन। परंतु उनका संग किसी भी तरह मिल जाए, वह कभी निष्फल नहीं जाता है। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है।